بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ریڈیو تہران ہے، اسلامی گنراج ایران کی آواز۔
ریڈیو تہران کے سمانی شروتا زہرا زیدی اور ساتھیوں کا سلام سویکار کریں۔ پریے شروتا مترو، کارکرم کا شبھارمبھ پویتر قرآن کے سورہ لقمان کی 16ویں، 17ویں اور 18ویں آیتوں کی تلاوت اور انواد سے کیا جا رہا ہے۔ قاری ہیں شری مصطفیٰ اسماعیل۔
بسم الله الرحمن الرحيم، يا بني إنها فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها
اللہ کے نام سے جو اتیانت کرپاشیل اور دیاوان ہے۔ لقمان نے کہا، ہے میرے بیٹے، یدی وہ کرم رائی کے دانے کے برابر بھی ہو، پھر وہ کسی چٹان کے بھیتر ہو یا آکاشوں یا دھرتی میں، ایشور اسے پرلے میں سامنے لے آئے گا۔ نسندے ایشور سوکشم درشی اور جانکار ہے۔ ہے میرے بیٹے، نماز قائم کرو اور بھلائی کا آدیش دو اور برائی سے روکو، اور جو بھی مصیبت تم پر پڑے اس پر دھیر کرو، نشچے ہی یہ بڑے ساہس کا کام ہے۔ اور لوگوں کے سامنے گھمنڈ سے اپنا منہ ٹیڑھا نہ کرو، اور نہ دھرتی پر اکڑ کر چلو، निसंदेह ईश्वर किसी अकड़ने वाले और इतराने वाले को पसंद नहीं करता।
यह रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है, इस्लामी गणराज ईरान की आवाज। दोस्तों, आप हमारे प्रसारण को शॉर्टवे में 31 मीटर बैंड बराबर 9800 किलोहर्ट्ज पर सुन रहे हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है hindi@ws.irib.ir। हमारी वेबसाइट का पता है parstoday.ir/hi। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 00989035065492। दोस्तों, आज गुरुवार है, आज़र की 16 और दिसंबर की 7 तारीख है। साथ ही आज इस्लामी कैलेंडर के 5वें महीने जमादी उल अव्वल की 23 तारीख है। आज की हमारी सभा के कार्यक्रमों की रूपरेखा कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले आप खबर सुनेंगे, उसके बाद आपकी सेवा में पेश किया जाएगा कार्यक्रम राजनीतिक चर्चा, और उसके बाद कार्यक्रम आज की बात आपकी सेवा में पेश किया जाएगा, और उसके बाद आज की सभा के अंत में आपकी सेवा में जो कार्यक्रम पेश किया जाएगा वो होगा ईरान शताब्दी के झरोके में। तो दोस्तों, कार्यक्रम के अनुसार अब आप रेडियो हिंदी तेहरान से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार रविश जैदी और मरियम मेहरदादी से सुनेंगे।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आज के मुख्य समाचारों का सारांश। गजा को लेकर अहम फैसला लेने जा रहे हैं ईरान और रूस, राष्ट्रपति रईसी मॉस्को पहुंचे। आने वाले दिन अवैध इसराइली शासन के लिए भयानक होने वाले हैं, ईरानी विदेश मंत्री। गजा के बारे में राष्ट्रसंघ को गुटेरस का अभूतपूर्व पत्र। बाइडेन की चुनावी रैली में भी जा पहुंचे फिलिस्तीन के समर्थक। और अब आप विस्तार से समाचार सुनिए।
इस्लामी गणराज ईरान के राष्ट्रपति रूस के राष्ट्रपति से गजा युद्ध समेत कई अहम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए गुरुवार को मॉस्को पहुंच गए हैं। प्राप्त रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामी गणराज ईरान के राष्ट्रपति सैयद इब्राहिम रईसी एक उच्च स्तरीय राजनीतिक और आर्थिक प्रतिनिधि मंडल के प्रमुख के रूप में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आधिकारिक निमंत्रण पर गुरुवार को रूस के लिए रवाना हुए। मॉस्को पहुंचने पर उनका रूस के उप प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर नोवाक और रूस के उप विदेश मंत्री सरगेई रायाफकोव द्वारा वनुकोवो हवाई अड्डे पर भव्य स्वागत किया गया। राष्ट्रपति का स्वागत किया गया, फिर रूसी राष्ट्रपति क्रेमलिन पैलेस में ईरान के राष्ट्रपति की मेजबानी करेंगे। उल्लेखनीय है कि आर्थिक बातचीत सहित द्विपक्षीय मुद्दों पर परामर्श, साथ ही क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों, विशेष रूप से फिलिस्तीन और गजा की ताजा स्थिति पर चर्चा इस एक दिवसीय यात्रा में इस्लामी गणराज ईरान के राष्ट्रपति का मुख्य एजेंडा है। ईरान और रूस द्विपक्षीय क्षेत्रों, विशेष रूप से आर्थिक, सैन्य और सुरक्षा संबंधों के साथ साथ अमेरिका की मनमानी और दादागिरी का सामना करने जैसे क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर रणनीतिक हित साझा करते हैं, और ये हाल के वर्षों में दोनों पक्षों के बीच घनिष्ठ सहयोग के मुख्य कारकों में से एक रहा है।
इस्लामी गणराज्य ईरान के विदेश मंत्री ने कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री के साथ टेलीफोन पर बातचीत में कहा कि इस्लामी प्रतिरोध ने अब तक ज़ायनी शासन की आक्रामकता का मुंह तोड़ जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि जिस जोश और जज्बे के साथ प्रतिरोध के जियाले مقابلہ کر رہے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے یہ پورے بھروسے سے کہا جا سکتا ہے کہ آنے والے دن اس اویدھ شاسن کے لیے بہت بھیانک ہوں گے۔ سماچار ایجنسی ایرنا کی رپورٹ کے مطابق اسلامی گنراج ایران کے ودیش منتری حسین امیر عبداللہیان اور قطر کے پردھان منتری اور ودیش منتری شیخ محمد بن عبدالرحمان آل ثانی نے غزہ اور ویسٹ بینک کی تازہ ستھی اور فلسطین کے خلاف آویزہ انشاسن کے اپرادھوں پر ٹیلی فونی وارتا میں چرچا کی۔ ایران اور قطر کے ودیش منتریوں نے غزہ اور ویسٹ بینک میں مہیلاؤں اور بچوں کے خلاف اویدھ آتنکی اسرائیلی شاسن دوارا کیے گئے اپرادھوں کی نندا کی اور یدھ اپرادھوں نرسنہار اور انتراشٹریہ قانونوں کے سپشٹ الگھن کو تتکال روکنے کا آہوان کیا۔ دونوں دیشوں کے ورشٹھ ادھیکاریوں نے وشو سمودائے کی چپی کی آلوچنا کرتے ہوئے کہا کہ جس پرکار فلسطینی جنتا پر اتیاچار ہو رہے ہیں اس کو روکنے کے لیے انتراشٹریہ سمودائے کو کھل کر سامنے آنا چاہیے۔
یمن کی راشٹریہ مکتی سرکار کے رکشا منتری نے کہا ہے کہ عقبہ کی کھاڑی سے لال ساگر میں استھت باب المندب تک اویدھ آتنکی اسرائیلی شاسن کے جہازوں کی آواجاہی پورن روپ سے پرتبندھت ہے۔ پراپت رپورٹ کے مطابق ایک سمے تھا کہ جب امریکہ اور اس کے سہیوگی مل کر کسی بھی دیش، ویکتی، سنستھا اور سنگٹنوں پر پرتبندھ لگا دیا کرتے تھے۔ یہ پابندیاں اپنے ورودھیوں کو ڈرانے سے لے کر ان کو ہرانے تک امریکہ اور اس کے پشمی سہیوگیوں کے کام آتی تھی، لیکن اب سمے بدل رہا ہے۔ نہ کیول امریکہ اور اس کے پشمی سہیوگیوں دوارا لگائے جانے والے پرتبندھ پربھاوہین ہو رہے ہیں بلکہ اب جواب میں ان پر بھی پرتبندھ لگایا جانے لگا ہے۔ ویسے اس کی شروعات اسلامی گنراج ایران نے ہی کی تھی۔ جب جب امریکہ نے ایران پر پرتبندھ لگائے ہیں تب تک تہران نے بھی اس کے جواب میں واشنگٹن پر بھی پابندیاں لگائی ہیں۔ اس بیچ پشمی ایشیا کے سب سے غریب لیکن بہادر راشٹر یمن نے حالیہ دنوں میں اس کے دوارا امریکہ اور اویدھ آتنکی اسرائیلی شاسن کے خلاف جس پرکار سے ایک کے بعد ایک قدم اٹھایا ہے اس نے پوری دنیا کو حیران کر دیا ہے۔
زائنی سینکوں نے فلسطینی نگر تلکرم کا پریوشن کر لیا ہے۔ جارڈن ندی کے پشچمی تٹ کے نگر تلکرم میں اس سمے زائنی سینکوں اور پرتیرودھ کے جیالوں کے بیچ بہت ہی گمبھیر جھڑپیں ہو رہی ہیں۔ الجزیرہ ٹی وی چینل کے انوسار زائنی سینک نے کم سے کم 30 بختربند گاڑیوں سے تلکرم نگر کو گھیرنے کے بعد اس پر دھاوا بول دیا ہے۔ یہ نور شم شرناتی شیویر کا پریوشن کرنے کے بعد اس پر حملہ کیا جا رہا ہے۔ دونوں پکشوں کے بیچ بہت ہی گمبھیر جھڑپوں کی سوچنا ہے۔
جارڈن کا ماننا ہے کہ اسرائیل کے بھیشڑ حملوں پر وشو سمودائے کا مون کسی بھی استھتی میں سویکار نہیں ہے۔ الجزیرہ ٹی وی چینل کے انوسار جارڈن کے ودیش منتری نے کہا ہے کہ ورتمان سمے میں اسرائیل جو کاروائی کر رہا ہے وہ بہت ہی اسپشٹ روپ میں ایک راشٹر کا کھلا ہوا جنسنہار ہے۔ ایمن اسفدی نے اپنے ایک سمبودھن میں کہا کہ انتراشٹریہ سمودائے کے اس مون کو سویکار نہیں کیا جا سکتا جو اسرائیل کے اپرادھوں کو چھپا رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یدھ ویرام کے ہمارے آہوان کے پرتی انتراشٹریہ سمودائے کی استھتی میں اپریاپت پریورتن دیکھا گیا ہے۔ جارڈن کے ودیش منتری کے انوسار وشو سمودائے کو کم سے کم کھیتر میں اپنے ہتوں کے سمرتن میں ہی آگے آنا چاہیے۔
راشٹر سنگھ کے مہا سچیو نے اس انتراشٹریہ سنستھا کو چیتاونی بھرا پتر بھیجا ہے۔ اپنے پتر میں انہوں نے سچیت کیا ہے کہ غزہ کی ورتمان ستھی وشو کی شانتی و سرکشا کے لیے خطرہ بن چکی ہے۔ فارس سماچار ایجنسی کے انوسار اینٹونیو گوٹیرس نے غزہ کی ورتمان ستھی کے بارے میں بدھوار کو راشٹر سنگھ کی سرکشا پریشد کو پتر بھیج کر وہاں کی ستھی سے اوگت کروایا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ غزہ کی پرستھتیاں بہت ہی تیزی سے ایک تراسدی کی اور بڑھ رہی ہیں۔ راشٹر سنگھ کے مہا سچیو نے کہا ہے کہ وشو سمودائے کو اپنے پربھاؤ کا پریوگ کرتے ہوئے غزہ سنکٹ کو ترنت سماپت کرنے کے پریاس کرنے چاہیے۔
امریکہ کے وبھن نگروں میں فلسطین کے سمرتھن میں لگاتار پردرشن کیے جا رہے ہیں۔ اس بار فلسطین کے امریکی سمرتھک اس دیش کے راشٹرپتی کی چناوی سبھا میں جا پہنچے۔ بوسٹن میں جس استھان پر جو بائیڈن چناوی بھاشن دے رہے تھے وہیں پر فلسطینیوں کے سمرتھکوں نے ایکترت ہو کر غزہ میں تتکال سنگھرش ویرام کی گھوشنا کی۔ سی بی ایس نیوز کے انوسار بدھوار کی شام بہت سے امریکی بوسٹن نگر کی اس سڑک پر پہنچے جہاں پر بائیڈن چناوی سبھا کو سمبودھت کر رہے تھے۔ انہوں نے فلسطینیوں کے سمرتھن کے ساتھ ہی غزہ میں تتکال سنگھرش ویرام کرانے کی مانگ کی۔ اسی کے ساتھ وہ زیونی جیلوں میں بند فلسطینیوں کی آزادی کی بھی مانگ کر رہے تھے۔
رجب طیب اردوغان نے زانی شاسن کو سچیت کیا ہے کہ حماس کے ورد کاروائی کی صورت میں اس کو پچھتانا پڑے گا۔ ترکی کے راشٹرپتی نے کہا کہ زانی شاسن نے حماس کے ورد ترکی میں کوئی کاروائی کی تو اس کو اس کی بھاری قیمت چکانی ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ نیتن یاہو نے جو کچھ کیا ہے اس کا بھگتان تو ان کو کرنا ہی پڑے گا۔ اردوغان کے انصار آج نہیں تو کل نیتن یاہو گرفت میں آئے گا اور اس کے ورد کاروائی کی جائے گی۔ ترکی کے راشٹرپتی کہتے ہیں کہ غزہ کی بھومی فلسطینی راشٹر کی ہے، اب یہ فیصلہ کرنے کا اسی کو ادھیکار ہے کہ کون وہاں پر حکومت کرے گا۔
اسرائیل نے یہ بات سویکار کی ہے کہ غزہ واسیوں کے جنسنہار میں امریکہ ویوہارک روپ میں اس کے ساتھ ہے۔ اویدھ زیونی شاسن کے یدھ منترالے نے بدھوار کو ایک بیان جاری کر کے بتایا کہ غزہ یدھ کے دوران اس نے امریکہ سے 10,000 ٹن سے ادھک کے وسفوٹک پدارتھ اور یدھ اپکرن حاصل کیے ہیں۔
اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے سماچار سماپت ہوئے۔
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے۔ راجنیتک چرچا۔ श्रोताओ, आपका स्वागत है कार्यक्रम राजनीतिक चर्चा में। मैं हूं अहमद अब्बास। राजनीतिक चर्चा में हम बात करेंगे गजा पट्टी पर ज़ायनी शासन के हमलों की। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सऊदी अरब और संयुक्त अरब इमारात का दौरा किया है। इस दौरे के कुछ संदेश और निहितार्थ हैं, ये विषय भी कार्यक्रम राजनीतिक चर्चा में शामिल रहेगा। भारत में 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों के बाद अब सरकार गठन की प्रक्रिया जारी है। तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री और मंत्रियों ने शपथ ली है। इस विषय पर हम एक रिपोर्ट आपको सुनाएंगे। तो चर्चा के विषय यही हैं। आरंभ करते हैं ज़ायनी शासन के हमलों से। ज़ायनी शासन की ओर से गजा पट्टी पर भीषण हमले हो रहे हैं। इस समय हमले मुख्य रूप से दक्षिणी गजा पट्टी और विशेष रूप से खान यूनुस नगर के आसपास के इलाकों पर केंद्रित हैं। जायजा पेश कर रहे हैं कायम रिजवी।
पिछले कुछ दिनों से अवैध ज़ायनी शासन ने अपने हमलों को दक्षिणी गजा पर केंद्रित कर रखा है। दक्षिणी गजा में भी उसने खान यूनुस नगर पर अपना ध्यान अधिक केंद्रित किया है। गजा में संघर्ष विराम की समाप्ति के बाद से जो इसराइल के हमले आरंभ हुए हैं उनमें अब दक्षिणी गजा को निशाना बनाया जा रहा है। जानकारों का कहना है कि इस काम के कई कारण हो सकते हैं। युद्ध के आरंभ में अपना अभियान बढ़ाने के लिए ज़ायोनियों ने यह ऐलान किया था कि गजा पट्टी का दक्षिणी क्षेत्र सुरक्षित क्षेत्र रहेगा। ऐसे में फिलिस्तीनी इस क्षेत्र की ओर पलायन कर सकते हैं। अब जब ये अवैध ज़ायनी शासन उत्तरी गजा में अपने लक्ष्यों को हासिल नहीं कर पाया तो उसने वहां के दक्षिणी क्षेत्र का रुख किया है। इसके अतिरिक्त ज़ायनियों का दावा है कि दक्षिणी गजा में हमास के कई नेता मौजूद हैं, इसलिए उनकी हत्या करने के लिए हम दक्षिणी गजा में कार्रवाई कर रहे हैं। बुधवार की रात को ज़ायनियों ने दक्षिणी गजा के खान यूनुस नगर पर भीषण हमले करने आरंभ कर दिए। ये हमले इतने भयानक हैं कि यूनिसेफ ने ऐलान किया है कि यहाँ पर बच्चों की हालत बहुत ही खराब है। टीकाकारों का कहना है कि दक्षिणी गजा को खतरे के रूप में दर्शाकर ज़ायनी वही नाटक करना चाह रहा है जो उसने गजा के अशफा अस्पताल को लेकर किया था, जहां पर उसने दावा किया था कि इसके नीचे हमास की सुरंगें हैं, जहां पर हमास का मुख्यालय मौजूद है, लेकिन वहां पर कुछ भी बाद में नहीं निकला। अब ज़ायनी ये दावा कर रहे हैं कि हमास के नेता दक्षिणी गजा में मौजूद हैं और हम उनको समाप्त करना चाहते हैं। غزہ پر حملے کرنے سے اویس زائونی شاسن کا ایک ادیش یہ بھی ہے کہ اس شیتر کو پوری طرح سے نشٹ کر دیا جائے تاکہ اس سے دباؤ میں آنے کے بعد حماس ہمارے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائے۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اپنے بندھکوں وشیش کر اپنے سینکوں کو آزاد کرانے کے لیے اسرائیل حماس پر دباؤ ڈالنے کے ادیش سے غزہ کا وناش کر رہا ہے۔ اس نے اس بار غزہ کا رخ اس لیے کیا ہے تاکہ اپنے بندیوں کو کسی بھی صورت میں سوتنت کروا سکے۔ اویس زائونی شاسن دکشنی غزہ کے فلسطینیوں کو مصر کی اور پلائن کے لیے وش کرنا چاہتا ہے۔ ان سب باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اویس زائونی شاسن آرمب سے ہی پورے غزہ کو نشٹ کرنا چاہتا تھا۔ غزہ کو پوری طرح سے نشٹ کرنے کے ادیش سے پہلے اس نے اتری غزہ پر حملے کیے اور اب وبھن بہانوں سے دکشنی غزہ پر حملے کر رہا ہے تاکہ اپنے نردھارت لکشوں کو حاصل کر سکے۔
روس کے راشٹرپتی ولادیمیر پوتین نے سنیوکت عرب امارات اور سعودی عرب کا دورہ کیا۔ اس دورے کے کئی مہتوپورن سندیش ہیں اور یہ سندیش خاص طور سے پشمی دیشوں کے لیے ہیں۔ جائزہ لے رہے ہیں محمد مہدی۔
روس کے راشٹرپتی ولادیمیر پوتین نے بدھوار 6 دسمبر کو سنیوکت عرب امارات اور سعودی عرب کی ایک دیوسی یاترا کی۔ سب سے پہلے وہ سنیوکت عرب امارات کی یاترا پر گئے جہاں دونوں دیشوں کے نیتاؤں نے غزہ جنگ سہت دوپکچھی اور انتراشٹریہ وشیوں کے بارے میں وچاروں کا آدان پردان کیا۔ سنیوکت عرب امارات کی یاترا پوری کر کے وہ سعودی عرب گئے جہاں کراؤن پرنس محمد بن سلمان سے دوپکچھی اور انتراشٹریہ معاملوں کے بارے میں وچاروں کا آدان پردان کیا۔ روسی راشٹرپتی ولادیمیر پوتین نے کورونا مہاماری پھیلنے کے آرمب سے لے کر اب تک پشچم ایشیا کی یاترا نہیں کی تھی۔ آخری بار ورش 2019 میں انہوں نے سنیوکت عرب امارات اور سعودی عرب کی یاترا کی تھی، پرنتو ولادیمیر پوتین انتراشٹریہ گھٹنا کرم میں ہمیشہ عرب نیتاؤں کے سمپرک میں رہے ہیں۔ اس سمے روسی راشٹرپتی نے دو مہتوپورن عرب دیشوں یعنی سنیوکت عرب امارات اور سعودی عرب کی جو یاترا کی ہے اس کے کچھ مہتوپورن سندیش ہیں۔ اس یاترا کا ایک مہتوپورن سندیش یہ ہے کہ پشمی و یورپی دیش وشیش کر امریکہ روس کو انتراشٹریہ منچ پر الگ تھلگ کرنا چاہتے تھے، پرنتو فارس کھاڑی کے دو مہتوپورن عرب دیشوں کی یاترا کر کے ولادیمیر پوتین نے بتا دیا کہ وہ اور روس نہ کیول انتراشٹریہ استر پر الگ تھلگ نہیں ہوئے ہیں بلکہ چھیتر میں امریکہ کے گھٹک بھی واشنگٹن کی مانگوں و اچھاؤں پر دھیان نہیں دے رہے ہیں۔ روسی راشٹرپتی کے سنیوکت عرب امارات اور سعودی عرب کی یاترا سے وشو سمودائے وشیش کر پشچمی و یورپی دیشوں اور امریکہ کو یہ سندیش گیا ہے کہ انتراشٹریہ عدالت کی اور سے روسی راشٹرپتی کی گرفتاری کا وارنٹ جاری ہونے کے باوجود وہ انتراشٹریہ منچ پر سکریہ ہیں۔ دوسری اور سنیوکت عرب امارات کی یاترا کے دوران روسی راشٹرپتی کا جس طرح سے سواگت کیا گیا اور اس دیش کے ادھیکاریوں کے ساتھ پوتین کی ملاقات اور وچار ومرش اس بات کا سوچک ہے کہ یہ دیش روس کے ساتھ اپنے سمبندھ وستار کو جہاں مہتو دے رہے ہیں وہی روس کے ساتھ سمبندھ وستار نہ کرنے کے سمبندھ میں امریکہ نے جو چیتاونی دی تھی یہ یاترا اس کی اپیکشا کا سوچک ہے۔ اسی طرح یہ یاترا اس بات کی سوچک ہے کہ پوری دنیا وشیش کر پشچم ایشیا سے امریکی داداگیری کا بوریا بستر بد رہا ہے۔ روس کی پرترکشا اور ودیش نیتی پریشد کے پرمکھ نے کہا ہے کہ فارس کھاڑی کے دو مہتوپورن عرب دیشوں کی پوتین کی یاترا اس بات کا سپشٹ سندیش ہے کہ روس انتراشٹریہ الگاؤ سے باہر نکل رہا ہے، اور یہ یاترا اس بات کی سوچک ہے کہ مدھیہ پور میں روسی پربھاؤ کو ادھک کرنے کی دشا میں ماسکو آگے بڑھ رہا ہے، اور ساتھ ہی فارس کھاڑی کے دو مہتوپورن عرب دیش اور امریکہ کے پارمپرک گھٹک اپنی ودیش نیتیوں کو سنتولت کرنے کے اچھک ہیں۔
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے۔ اور آپ سن رہے ہیں کاریکرم راجنیتک چرچا۔ समाचारों से एक कदम आगे बढ़ते हुए घटनाओं की तह तक पहुंचने और विभिन्न आयामों को छूने की कोशिश। कार्यक्रम राजनैतिक चर्चा।
भारत में विधानसभा चुनाव हो जाने के बाद सरकार गठन की प्रक्रिया चल रही है। तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही है और जिसके तहत कांग्रेस पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों ने शपथ ग्रहण की। ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता शमशाद काजमी।
तेलंगाना की हालिया विधानसभा चुनाव में भारत राष्ट्र समिति को पराजित करने के बाद आज कांग्रेस ने इस राज्य में सत्ता संभाल ली। शपथ ग्रहण समारोह हैदराबाद के LB स्टेडियम में आयोजित हुआ, जहां 56 वर्षीय अनुमूला रेवंत रेड्डी ने मुख्यमंत्री के रूप में पद एवं गोपनीयता की शपथ ली।
शासन द्वारा निर्मित भारत राज्यांगम पट्ल निजमैन विश्वासं विधेयत चूपतानने भारत देश सार्वभौमाधिकारान्नि।
कांग्रेसी नेता मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया। 62 वर्षीय मल्लू भट्टी ने कांग्रेस के चुनावी प्रचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तेलंगाना की राज्यपाल सौंदराजन ने 10 दूसरे मंत्रियों को भी पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इन मंत्रियों के पदभार की घोषणा बाद में की जाएगी। शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेसी नेताओं सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे सहित अनेक दिग्गज कांग्रेसी नेताओं ने भाग लिया। इस शपथ ग्रहण समारोह में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री DK शिव कुमार ने भी भाग लिया। वर्ष 2014 में तेलंगाना राज्य की स्थापना के बाद कांग्रेस यहां पहली बार सत्ता संभाल रही है और रेवंत रेड्डी तेलंगाना में कांग्रेस के पहले मुख्यमंत्री हैं। ज्ञात रहे कि हालिया विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में हार का मुंह देखना पड़ा था। राजस्थान और छत्तीसगढ़ की सत्ता कांग्रेस के हाथ से निकल गई, जबकि तेलंगाना में उसने BRS से सत्ता छीन ली। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संसद भवन परिसर में भाजपा के संसदीय दल की बैठक को, जहां उनका स्वागत भी किया गया, संबोधित करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भाजपा ने जहां जीत दर्ज कराई है, वहीं मिजोरम और तेलंगाना में हमारी शक्ति में वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि तीन राज्यों में जीत पार्टी कार्यकर्ताओं की सामूहिक जीत है और ये जीत टीम वर्क को मिली है। भाजपा संसदीय बोर्ड की ये बैठक ऐसे समय में हुई है जब राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्रियों के चयन को लेकर सस्पेंस अभी बना हुआ है। इन राज्यों के वरिष्ठ नेताओं को दिल्ली बुलाया गया है। हाल ही में घोषित हुए 5 राज्यों के चुनावी नतीजों में राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की हार को वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस अब हिंदी हार्टलैंड के एक बड़े हिस्से से बाहर हो गई है। शमशाद काजमी, रेडियो तेहरान, दिल्ली।
और इसी के साथ राजनीतिक चर्चा का कार्यक्रम समाप्त होता है।
यह रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है, इस्लामी गणराज ईरान की आवाज। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे हमारे साथी अहमद अब्बास की जबानी कार्यक्रम राजनीतिक चर्चा। अब आपकी सेवा में पेश है कार्यक्रम आज की बात।
आज की बात।
श्रोताओ, कार्यक्रम आज की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं अहमद अब्बास। भारत में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए। चुनाव शांतिपूर्ण रहे, ये सभी के लिए संतोष की बात है। चुनाव संपन्न होने के बाद एक मुद्दा उठा, हॉर्स ट्रेडिंग का। कार्यक्रम में हम इसी पर बात करेंगे।
भारत में चुनाव हो जाने और नतीजे आ जाने के बाद एक बड़ा डर हॉर्स ट्रेडिंग का रहता है। ये वाकई पार्टियों के लिए भी गंभीर चिंता का विषय है, जबकि जनता के लिए भी ये बड़ी फिक्रमंदी की बात है, क्योंकि हॉर्स ट्रेडिंग दरअसल जनादेश का प्रारूप ही बदल देती है। वो सरकार सत्ता में आ जाती है जिसे जनता ने नहीं चुना होता, ये दरअसल लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए बड़ा धचका होता है। दलबदल कानून बन चुका है जिसका मकसद इसी स्थिति को काबू में करना था। आईएएस कोचिंग चाणक्य के लेक्चरर विस्तार से समझाते हैं कि एंटी डिफेक्शन कानून क्या है।
एंटी डिफेक्शन लॉ हमारा जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें तो इसका कोई प्रोविजन नहीं था। लेटर ऑन 52nd अमेंडमेंट के थ्रू 1985 में एंटी डिफेक्शन लॉ लाया जाता है और इसमें बहुत सारे प्रोविजन रहते हैं रिगार्डिंग डिफेक्शन। बहुत सारे इसमें प्रोविजंस बनाए जाते हैं क्योंकि उस जो भी पॉलिटिकल टर्मोइल होता है, कभी बहुत बार ऐसा होता है कि कोई लीडर इस पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में चला जाता है, कभी बहुत सारे ग्रुपिंग्स मिलके एक पार्टी को डिफेक्ट करके दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते हैं। तो इन सब चीजों को हैंडल करने के लिए यह दल बदल विरोधी कानून लाया गया था, एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया था। इसके क्या मेजर प्रोविजंस है सो पहले देखिए, ग्राउंड ऑफ डिफिक्शन, आखिर कौन कौन से ग्राउंड पे डिफिक्शन हो सकता है अंडर दिस एंटी डिफिक्शन लॉ। पहला है, इफ एन इलेक्टेड मेंबर वॉलंटरी गिव्स अप हिज मेंबरशिप ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी, कि अगर जो पार्टी के सपोज कोई पार्टी है ए, उसके इलेक्शन से उसके टिकट पे कोई मेंबर एमएलए बन जाता है, तो अगर यह एमएलए इस पार्टी का मेंबरशिप पार्टी ए का अगर मेंबरशिप को छोड़ देता है तो उसका सीट वैकेंट हो जाता है। मतलब वह ग्राउंड का डिफेक्शन है अंडर द एंटी डिफेक्शन लॉ, कि वॉलंटरली ही कोई मेंबर कहता है कि आज से हम इस पार्टी का मेंबरशिप छोड़ रहे हैं। इलेक्टेड मेंबर, प्लीज रिमेंबर, इलेक्टेड मेंबर अगर वो कहता है कि इस पार्टी का मेंबरशिप हम छोड़ रहे हैं तो उस पर एंटी डिफेक्शन लॉ लागू हो जाता है, मतलब उसकी मेंबरशिप खत्म हो जाएगी। वायलेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये क्या है, इफ ही वोट्स, मतलब वो कोई भी मेंबर वोट्स और अब्स्टेन फ्रॉम वोटिंग इन सच हाउस कंट्ररी टू एनी डायरेक्शन इशू बाय हिज पॉलिटिकल पार्टी और एनी वन ऑथराइज टू डू सो विदाउट ऑब्टेनिंग प्रायर परमिशन, कि अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर हैं और उस पॉलिटिकल पार्टी के डायरेक्शन को नहीं मानते हैं, और अगर वो मान लेते हैं पार्टी आपको कहती है कि आपको वोटिंग के दिन प्रेजेंट रहना है और आप अब्स्टेन रह जाते हैं या पार्टी के अगेंस्ट में जाके वोटिंग कर देते हैं, तब पर भी आप पे डिफेक्शन लॉ लागू हो सकता है, मतलब एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत आप पे डिफेक्शन लग सकता है।
लेकिन राजनीतिक दलों के पास इस कानून से बचने और सदन की सदस्यता बचाने का रास्ता भी मौजूद है, तो देखने में आता है कि इस गंभीर समस्या का कोई वास्तविक समाधान नहीं खोजा जा सका है।
दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आज की बात। इस कार्यक्रम में हम हर गुरुवार को चर्चा करते हैं भारत के महत्वपूर्ण विषयों पर। कार्यक्रम आज की बात,
इस बार 30 नवंबर को आखिरी चरण का मतदान हुआ, जिसके साथ ही 5 राज्यों की विधानसभा चुनावों का एक महत्वपूर्ण अभियान मुकम्मल हुआ। इतने बड़े पैमाने पर चुनावों का आयोजन करवाना वाकई एक बड़ी जिम्मेदारी है जो अच्छी तरह निभाई गई। अब चिंता का विषय हॉर्स ट्रेडिंग का मसला है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम विधानसभा चुनाव के बाद ये चिंता उत्पन्न हो गई है। दरअसल हॉर्स ट्रेडिंग के तहत कोई भी हारती हुई पार्टी जीते हुए विधायकों को खरीद कर अपनी ओर कर लेती है और राज्य में अपनी सरकार बनाने की कवायद शुरू कर देती है। इससे बचने के लिए पार्टियां विधायकों की बाड़ाबंदी करती हैं। विधायकों की बाड़बंदी के तहत विधायक जिस पार्टी से जीतता है उसे वही पार्टी अपने संरक्षण में रखती है, ताकि विपक्षी पार्टी उसे खरीदने की कोशिश ना कर सके। वरिष्ठ पत्रकार दीपक शर्मा हॉर्स ट्रेडिंग बहुत अनैतिक मानते हैं। उनका कहना है कि ये तो घोड़ों की खरीद फरोख्त जैसी चीज है।
एक बेहतर राजनीति के लिए, एक बेहतर जनतंत्र के लिए सरकारें फ्लोर पे बननी चाहिए और वहीं बिखरनी चाहिए, लेकिन अगर फ्लोर के पीछे बिहाइंड द कर्टन्स अगर हॉर्स ट्रेडिंग हो रही हो, दाम लग रहे हों, जैसे अस्तबल में घोड़ों के दाम लगते हैं, अगर इस तरह के दाम वहाँ लग रहे हैं विधायकों के, तो मुझे लगता है कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा। एक ऐसे समय में जो पत्रकार हैं वो भी अपनी भूमिका निभाते हैं, जो ब्यूरो चीफ होता है वो कुछ दिन के लिए पार्टी का ब्यूरो चीफ हो जाता है, क्योंकि अगर आप कोई सरकार बना रहे हैं और किसी को तोड़ के ला रहे हैं, आप उसमें नारद का काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका भी कमीशन होगा उसमें, और कमीशन नहीं होगा तो जो सरकार बनेगी, जो सत्ता आएगी, जो शासन आएगा, उसमें कहीं ना कहीं हिस्सेदारी होगी, कहीं ना कहीं फेवर होगा।
मीडिया में खबरें आई कि कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष डी के शिवकुमार को विधायकों की बाड़बंदी का जिम्मा सौंपा गया। कांग्रेस ने अपने जीते हुए विधायकों को मतगणना के तुरंत बाद रायपुर पहुंचाने का आदेश दिया। शिवकुमार को 2 से 3 रिसॉर्ट या होटल तैयार रखने के लिए कहा गया था। सूचना थी कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के विधायकों को वहां ठहराने की बात भी कही गई थी। डीके शिवकुमार ने दावा किया कि 5 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बन रही है, इसलिए हॉर्स ट्रेडिंग यानी कि विधायकों की खरीद फरोख्त की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। कौशल स्वर्णवेर पत्रकार हैं और वो भी इस विषय को जनता और लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए गंभीर चिंता का विषय मानते हैं।
मुझे लगता है कि जो खरीद फरोख्त की जो राजनीति है, वो चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, किसी को भी मुझे लगता है शोभा नहीं देता, क्योंकि आपने जैसा कहा कि जनता ने चुनकर जिन्हें भेजा है, निश्चित तौर पर पब्लिक अपने तरफ से जनप्रतिनिधि चुनती है और उसको सरकार में भेजती है। यदि कोई सरकार वस्तु स्थिति के साथ अपनी पूरी गंभीरता के साथ यदि चल रही होती, यदि उसे बीच में डिस्टर्ब किया जाएगा, तो निश्चित तौर पर जो जनता है जिसने सरकार को चुना है, जो पूरे वोट देकर किसी व्यक्ति को विधानसभा या लोकसभा में भेजा है, निश्चित तौर पे यदि उसको आप डिस्टर्ब करेंगे, चलती हुई सरकार को गिराने की कोशिश करेंगे, मुझे लगता है ना तो ये भाजपा के लिए बल्कि कांग्रेस भी यदि ऐसा करती तो ये बिल्कुल गलत होगा। क्योंकि जहां तक लोकतंत्र का सवाल है, लोकतंत्र में चुने हुए जनप्रतिनिधियों का जो महत्व है, यदि आपने जैसा कहा कि किसी पार्टी की ओर से किसी चुनाव चिन्ह पे चुनाव लड़के वो सदन में पहुंचते हैं, निश्चित तौर पे वो सदन में पहुंचते हैं, लेकिन हर नेता के पीछे कुछ ना कुछ ऐसे राजनीतिक हस्तक्षेप होते हैं जिससे वो डरता है। और जिस तरह के जो कृत्य हो रहे हैं, जो चर्चा चल रही है कि किसी को ईडी से डराया जा रहा है, किसी को आईटी से डराया जा रहा है, यदि इस तरह का कृत्य हो रहा है तो मुझे लगता है कि ये लोकतंत्र के पूरी तरह दुर्भाग्यजनक है।
भारत के पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत अटल बिहारी वाजपेयी का एक काफी पुराना भाषण है जो उन्होंने संसद में दिया था। वाजपेयी कहते दिखाई दिए कि हॉर्स ट्रेडिंग ने हमारे लोकतंत्र को बर्बाद करके रख दिया है। वो कहते हुए सुने गए कि ये ईमान का सौदा है, ये सांसदों और विधायकों की खरीद फरोख्त का बाजार है।
पिछली लोकसभा इस बात की साक्षी है और सदन का रिकॉर्ड गवाह है कि किस तरह से राती रात में अल्पमत बहुमत में बदला था। जब मतदाता सो रहे थे, थककर चूर थे, तब लोकतंत्र की लाज लुट रही थी, तब ईमान का सौदा हो रहा था, तब पार्लियामेंट के मेंबरों की खरीद फरोख्त का बाजार खुला हुआ था। वो रास्ता हमारे लिए भी खुला था, मगर हमने उस पर जाने से इनकार कर दिया। अनैतिक तरीके अपनाकर भ्रष्टाचार का सहारा लेकर ईमान का सौदा करके सरकार में आना या सरकार में बने रहना, ऐसा पाप हमारे हाथों से कभी नहीं होगा। हम आपको आश्वासन दे रहे हैं, लोकतंत्र एक नैतिक व्यवस्था है, अपने मूल में नैतिक व्यवस्था है।
पुरानी सरकार के सामने रास्ता खुला था कि वो ईमानदारी से गठबंधन करते, विरोधी दलों को तोड़ने की जरूरत नहीं थी, दल बदल कानून की धज्जियां उड़ाने की जरूरत नहीं थी।
हालांकि ये अलग बात है कि इस समय उन्हीं की पार्टी यानी भाजपा पर हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप सबसे ज्यादा लगाया जाता है। ये सच्चाई है कि हॉर्स ट्रेडिंग लोकतंत्र में वाकई जनता और जनादेश के साथ खिलवाड़ करने जैसी हरकत है और इस पर अंकुश लगना लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण है। अब तक की कोशिशें जो भी रही हैं, सच्चाई तो यही है कि हॉर्स ट्रेडिंग अब भी जारी है और इसके लिए पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं। इस समस्या का समाधान कैसे होगा ये तो फिलहाल स्पष्ट नहीं है, मगर ये सबके लिए सर्वविदित है कि ये समस्या काफी गंभीर है। हॉर्स ट्रेडिंग से अगर कोई पार्टी एक बार सरकार बनाती है और उसको अपनी जीत मानती है तो ये भी तय है कि कभी इसी गलत परंपरा से उसे भी चुनावी और राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। अलबत्ता ये गलत परंपरा किसी भी पार्टी के नफे या नुकसान में हो या ना हो, जनता और संविधान के लिए तो हमेशा और पूरी तरह नुकसानदेह है। श्रोताओं, कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है, अनुमति दीजिए।
यह रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है, इस्लामी गणराज ईरान की आवाज। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आज की बात। अब आज की सभा के अंत में जो कार्यक्रम आपके लिए पेश किया जा रहा है वो है ईरान शताब्दी के झरोके में। तो चलिए साथ में मिलकर सुनते हैं कार्यक्रम ईरान शताब्दी के झरोके में। ईरान शताब्दी के झरोके में
दोस्तों, कार्यक्रम ईरान शताब्दी के झरोके में की एक अन्य कड़ी के साथ आपकी सेवा में उपस्थित हैं मरियम मेहरदादी और रवीश जैदी का सलाम स्वीकार कीजिए।
दोस्तों, पिछली शताब्दी की महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक वहाबियत नाम के नकली संप्रदाय का विकास और विस्तार है। ये नकली संप्रदाय अपनी स्थापना के बाद से अब तक दो शताब्दियों से अधिक समय से दीमक की तरह इस्लाम धर्म को नष्ट करने और उसके मूल्यों को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। एक ऐसा संप्रदाय कि जिसका किसी भी तरह का बुद्धिमत्ता से कोई संबंध नहीं है और न ही मानव स्वभाव के अनुकूल तरीकों से किसी भी तरह से मेल खाता है। वहाबियत इस्लाम की मुख्य विचारधारा से बिल्कुल अलग एक ऐसा नया संप्रदाय है जो नजद के शासक मोहम्मद बिन सऊद के साथ मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब इस संप्रदाय के संस्थापक के गठबंधन और पुनः स्थापना के बाद एक सरकारी विचारधारा के रूप में उभरा। वहाबियत ने 19वीं शताब्दी के मध्य में उस समय अपना सिर उठाना शुरू किया कि जब सऊदी अरब की सत्ता पर आले सऊद शासन ने अपनी पकड़ बना ली थी।
सऊदी अरब की भूमि कई शताब्दियों तक ओटोमन अर्थात तुर्की के उस्मानिया शासन के अधीन थी और इस परिवार का श्रेय सऊद बिन मोहम्मद आले मुकरीन को जाता है जो बाद में आले सऊद बन गया और इस देश का नाम इस परिवार से लिया गया था। वर्ष 1720 में अरब प्रायद्वीप के केवल एक छोटे से हिस्से पर इस परिवार का प्रभुत्व था, लेकिन पहले और दूसरे विश्व युद्ध के बाद से ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका के समर्थन से आले सऊद परिवार ने रियाज पर प्रभुत्व जमा लिया और 1932 से उन्होंने अरब प्रायद्वीप पर आले सऊद शासन के एक नए युग की स्थापना की। इस प्रकार ओटोमन साम्राज्य के विभाजन के बाद सऊदी अरब को आले सऊद को सौंप दिया गया। आले सऊद परिवार को इसलिए भी इस क्षेत्र की बागडोर सौंपी गई क्योंकि उनकी मान्यताएं उपनिवेशवादियों के लक्ष्यों के अनुकूल थीं।
सऊदी अरब की पूर्ण स्थापना के बाद सऊदी राजाओं को अपने अस्तित्व के लिए अपने राजनीतिक कार्यों और व्यवहारों को वैध बनाने के लिए एक धर्म की आवश्यकता थी। اسی کو دیکھتے ہوئے ایک بار پھر سے سعودی عرب میں محمد بن عبد الوہاب اور اس کے پد بھرشٹ اور گمراہ وچاروں کی چرچا ہونے لگی۔ ساتھ ہی اپ نویش وادیوں دوارا بھی یہ دباؤ بنایا جانے لگا کہ آل سعود محمد بن عبد الوہاب کے وچاروں کو ہی آگے بڑھائیں۔ محمد بن عبد الوہاب 18ویں شتابدی کے حنبلی سمپردائے سے سمبندھت ودوانوں میں سے ایک تھا جس نے وہابی سمپردائے کی استھاپنا کی تھی۔ محمد بن عبد الوہاب کے وچار اور سوچ ابن تیمیہ کے سدھانتوں پر آدھارت ہیں۔
احمد بن عبد الحلیم بن تیمیہ حرانی، جسے ابن تیمیہ کے نام سے جانا جاتا ہے اور جس کا سمبندھ 8ویں شتابدی ہے، اس نے سلفسٹ وچاروں اور رائے کو پرستت کیا کہ جس کا پہلے کسی بھی اسلام مت یا سمپردائے سے کسی بھی طرح کا کوئی بھی سمبندھ نہیں تھا۔ اس سمے کے مہان سنی نیائے ودوں نے اس کے وچاروں کو نہ کیول سویکار نہیں کیا بلکہ اس کی نندا بھی کی۔ اس سمے کے اسلامی جگت کے بڑے بڑے دھارمک ودوانوں نے اس کا ورودھ کیا، کچھ نے اسے کافر مانا اور کچھ نے اسے کاراواس کی سزا دینے کی بھی مانگ کی۔
دوستو، اسلامی جگت کی بڑی بڑی ہستیوں اور ودوانوں کے بھرپور ورودھ کی وجہ سے ابن تیمیہ کی مانیتائیں 12ویں شتابدی تک وکست نہیں ہو پائیں۔ اس بیچ جب ابن تیمیہ نے دیکھا کہ اس کی دال نہیں گل رہی ہے تو وہ نج کے مشہور دریا شہر بھاگ گیا۔ اس سمے کا دریا شہر کے شاسک محمد بن سعود نے عبد الوہاب کے وشواسوں کو اپنی سرکار کو مضبوط کرنے کے لیے اپیکت سمجھا اور اسے اس کی وچاردھارا کے پرچار اور پرسار کی اجازت دے دی۔ محمد بن سعود نے محمد بن عبد الوہاب کے ساتھ ایک سمجھوتا کیا کہ جس کے انوسار ان کا سرکاری تنتر محمد بن عبد الوہاب کے وچاروں کے پرچار اور پرسار میں پوری مدد کرے گا، لیکن اس کے بدلے میں وہ ان کی سرکار کی مضبوطی کے لیے دھرم کے سبھی ہتھکنڈوں کا استعمال کرے گا۔ اس پرکار دونوں کے بیچ ہوئے سمجھوتے کے مطابق سرکار محمد بن سعود کے ہاتھ میں تھی اور دھرم کے پرچار پرسار کی پوری ذمہ داری محمد بن عبد الوہاب کے ہاتھ میں۔
دونوں کے بیچ ہوئے سمجھوتے کے بعد محمد بن سعود کے شاسن کے ادھین آنے والے شہروں میں مارچ کیا گیا اور جو کوئی بھی ان کے مانیتاؤں سے اسہمت تھا اسے کافر کہہ کر مار ڈالا گیا۔ تب سے سعودی سرکاروں نے آنترک ورودھ اور چنوتیوں سے نپٹنے کے لیے وہابیت کو ایک اپکرن کے روپ میں استعمال کرنا آرمبھ کیا۔ وہابی سمپردائے سے جڑے ہوئے دھارمک نیتاؤں نے آل سعود کی غلط نیتیوں اور غیر قانونی کاریوں کو وید بنانے کے لیے دھرم کا سہارا لینا شروع کیا اور ان کے فیصلوں کے سمرتھن میں فتوے جاری کرنے لگے۔ ساتھ ہی وہابی دھرم گروؤں نے آل سعود کی نیتیوں کا کسی بھی طرح کے ورودھ کو اوشواس اور دھرم چھوڑنے کے سمان بتانا شروع کر دیا، جس کے ذریعے آج تک وہ آل سعود کے ورودھیوں کو کمزور اور ختم کر دیتے ہیں۔ وہابی دھرم گرو نہ کیول سعودی ناگرکوں کو اپنے نیتاؤں کے آدیشوں کا پالن کرنا سکھاتے ہیں بلکہ ان کے ہر طرح کے کاریوں کو اچھت بھی ٹھہراتے ہیں۔
وہاں بھی دھرم گروؤں دوارا پیدا کی گئی یہ استھتی اس بات کا کارن بنی کہ آل سعود کو یہ پوری طرح وشواس ہو گیا کہ وہابیت کی ایک ایسا راستہ ہے کہ جو ان کے شاسن کو کسی بھی طرح کی استھرتا سے سرکشت رکھے گا۔ اسی وجہ سے سعودی عرب میں وہابی مشنریوں کو سعودی راجکماروں کے بعد دوسرا سب سے شکتیشالی آندولن مانا جاتا ہے۔ جس طرح وہابی درباری دھرم گرو اپنے فتووں سے آل سعود پریوار کو ویدتا دیتے تھے، اسی طرح بدلے میں اس دیش کے شاسک وہابی دھرم گروؤں کو ستہ میں اچھے اور اچ استھان پردان کرتے ہیں۔ دھرم سے جڑے ہوئے سبھی معاملوں کی ذمہ داری وہابی دھرم گروؤں کے پاس ہوتی ہے۔ اسی طرح آل سعود شاسن نے سعودی عرب میں موجود اوقاف سے سمبندھت سبھی سنستھاؤں اور منترالیوں کی ذمہ داری بھی وہابی دھرم گروؤں کو سونپی ہوئی ہے۔
वहाबी संप्रदाय के अनुयायियों का मानना है कि इस्लाम में नवीनता लाने और पवित्र कुरान और हदीसों का पालन करने में केवल वे ही सही हैं। उनके अनुसार मुसलमानों में केवल वही है कि जो पवित्र कुरान की आयतों और पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्तों पर चलते हैं। मुसलमानों में केवल वहाबी ही एक ऐसा संप्रदाय है कि जो ईश्वर को शरीर वाला एक वजूद मानता है और वे एक प्रकार की समानता और अवतार में विश्वास रखते हैं। वहाँ भी विचारधारा धार्मिक हस्तियों और यहाँ तक कि अंतिम ईश्वरीय दूत पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी दुआ मांगने की शिर्क मानती है और ईश्वर के करीबी बंदों की जियारतों को भी पूरी तरह इस्लाम विरोधी मानती हैं। इसलिए सऊदी अरब पर विजय प्राप्त करने के बाद वहावियों ने इस्लाम की शुरुआत से बचे अवशेषों और मुसलमानों के अधिकांश सम्मानित और पवित्र स्थानों को नष्ट करना शुरू कर दिया, जिसमें बकी कब्रिस्तान का विनाश भी शामिल था।
दोस्तों, इस्लाम की शिक्षाओं के अनुसार इस्लामी संप्रदायों और धर्मों के बीच मतभेद स्वाभाविक हैं, लेकिन ये मतभेद मुसलमानों के बीच संघर्ष और हिंसा के कृत्यों का कारण नहीं है, क्योंकि धार्मिक मान्यताओं को कायम रखते हुए सामान्य सिद्धांतों पर सहमति बनाना संभव है। लेकिन वहाँ भी ऐसी कट्टर विचारधारा है कि लोग शामिल हैं कि जो किसी भी सच्चाई को स्वीकार नहीं करते। ये ऐसी स्थिति में है कि स्वयं पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो लोगों को कट्टरता के लिए आमंत्रित करता है वो हम में से नहीं है, और जो कट्टरता के लिए लड़ता है वो हम में से नहीं है, और जो कट्टरता के साथ मरता है वो भी हम में से नहीं है। आले सऊद ने अपनी अपार तेल आय के माध्यम से वहाबियत के लिए ऐसे मार्ग प्रशस्त किए हैं कि जिसके जरिए वो अपनी विचारधारा को पूरी दुनिया में फैला सके। इसी परिप्रेक्ष्य में आले सऊद ने इस्लामिक दुनिया के देशों के बीच विभाजन, पाखंड और दुश्मनी पैदा करने के लिए तकफीरी आतंकवादी दाइश और अलकायदा जैसे वहाबी मानसिकता वाले लोगों को प्रशिक्षित किया करने के लिए विभिन्न देशों में अपने धार्मिक केंद्र स्थापित किए।
आले सऊद ने इसी तरह लोगों को वहाबी मान्यताओं में रुचि लेने के लिए दुनिया के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न धार्मिक और उपदेश केंद्र स्थापित करने के लिए बहुत पैसा खर्च किया। हालांकि ये भयभीत संप्रदाय सभ्यता की कई अभिव्यक्तियों के उपयोग को धर्म के विरुद्ध मानता है, लेकिन आज की दुनिया की वास्तविकताओं ने उन्हें समय के साथ इन विश्वासों से दूर कर दिया है। वहाबियों ने अपने आधारहीन धर्म का प्रचार करने और मुसलमानों के बीच मतभेद पैदा करने के लिए रेडियो, टेलीविजन, सैटेलाइट और इंटरनेट जैसे मीडिया का रुख किया और इन क्षेत्रों में भारी मात्रा में धन का निवेश किया। वर्तमान स्थिति में कई आतंकवादी तकफीरी नेटवर्क की बौद्धिक उत्पत्ति वहाबी संप्रदाय की चरमपंथी और विचलित प्रवृत्ति में निहित है, जिसका वास्तविक इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। इन गुमराह मान्यताओं ने क्षेत्र और दुनिया में आले सऊद की आतंकवादी गतिविधियों और हस्तक्षेपों और देशद्रोही कार्यवाहियों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
दोस्तों, आले सऊद स्वयं अभी भी अपने एजेंडे में हिंसा और युद्ध रखते हैं, और उनका प्रचार इस्लामी दुनिया में कला और युद्ध फैलाने का काम करता है। पिछले वर्षों में उन्होंने कई तकफीरी समूह बनाए हैं, जिनमें से सभी की विशेषता कट्टरता, पत्थरबाजी, अन मुसलमानों के साथ दुश्मनी और रक्तपात है। अफगानिस्तान में तकफीरी आतंकवादी समूह अलकायदा, नाइजीरिया में बोको हराम, इराक और सीरिया में दाइश और नुसरा फ्रंट, सोमालिया में अल शबाब और लेबनान, लीबिया, मिस्र और अफगानिस्तान में कुछ समान समूह उन समूहों में से हैं जो वहाबी संप्रदाय का अनुसरण करते हैं। वे वास्तव में इस्लामी दुनिया में विभाजन, युद्ध
और हिंसा फैलाने में आले सऊद के प्रतिनिधि हैं। सीरिया और इराक में दो इस्लामी देश हैं कि जिन पर युद्ध थोपने के लिए सऊदी अरब ने अपने तकफीरी समूहों का इस्तेमाल किया और सैकड़ों हजारों लोग इस आतंकवाद का शिकार हुए।
इसके अलावा तकफीरी समूहों के आतंकवादी हमलों के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान, अफगानिस्तान, मिस्र, लीबिया और लेबनान और यहाँ तक कि कुछ यूरोपीय देशों में हजारों लोग मारे गए। वहीं देश और विदेश में सऊदी अरब की गतिविधियों से पता चलता है कि क्षेत्र और दुनिया में अधिकांश आतंकवादी सऊदी मूल के हैं या सऊदी अरब की वहाबी विचारधारा से प्रभावित हैं और उन्हें आले सऊद का न केवल वित्तीय बल्कि हथियारों का भी समर्थन प्राप्त है। साथ ही इस बात में भी कोई शक नहीं है कि सऊदी अरब के शासकों ने उपनिवेशवादियों के समर्थन से इस्लाम धर्म को बदनाम करने के लिए वहाबी संप्रदाय को मजबूत किया और आतंकवादी विचारधारा वहाबियत को शांति, मानवता का संदेश देने वाले सच्चे इस्लाम के स्थान पर लाने के लिए अपने सभी प्रयास किए, जो इस बात का कारण बना कि आज दुनिया आतंकवाद को इस्लाम से जोड़कर देख रही है। वहीं अब वहाबियत की पोल खुलने लगी है और स्वयं सऊदी अरब भी इस बात को अच्छी तरह समझने लगा है।
तो दोस्तों, कार्यक्रम का समय अब यहीं समाप्त होता है, हमें अनुमति दीजिए। यह रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। श्रोताओं, आप हमारे प्रसारण को शॉर्टवे में 31 मीटर बैंड बराबर 9800 किलोहर्ट्ज़ पर सुन रहे हैं। हम आशा करते हैं कि हमारा प्रयास आपको पसंद आया होगा। कार्यक्रमों के बारे में अपने विचारों और प्रतिक्रियाओं से हमें अवश्य अवगत करवाते रहिए। हमारा पता है, ईमेल एड्रेस है हमारा hindi@ws.irib.ir। तो अगली सभा तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।